तो वो भी सहायक है। तो इसलिए काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि और भी जितने जो अवगुण हैं उन सब का परिवर्तन हो जाता है। ये जो बाधक हैं सब हमारे सहायक बन जाते हैं। और जब बुद्धि के भीतर के बीच के मां समझो कि इन दोषों का अत्यंत अभाव हो जाता है तो उसी काल में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। एक मिनट का भी विलंब नहीं होता है। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद में उनके मन बुद्धि इंद्रियों के बीच में सात्विक राशि तामसी जिसको मैंने अवगुण बतलाए ये तो रहते ही नहीं। शरीर तीनों गुणों का एक समूह है, इसलिए शरीर के भीतर के बीच में जो शरीर निर्वाह के लिए जो वृत्ति है सात्विक राशि तामसी ये रहती है, किंतु उसे मुक्त पुरुष का उनसे कोई संबंध नहीं रहता। वो किस प्रकार से रहती है कि जैसे भगवान ने गीता में बतलाया प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडुवे न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाश तो सत्वगुण का कार्य है, मन बुद्धि इंद्रियों के मन जो जागृति है ये प्रकाश, मन में प्रकाश, बुद्धि में प्रकाश, इंद्रियों में प्रकाश, बुद्धि में जो ज्ञान की बाहुलता है ये बुद्धि का प्रकाश, और इंद्रियों के बीच के मां जो हरेक कार्य के विषय में जानकारी है शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि के विषय में वो इंद्रियों में प्रकाश, देह के मन जो आलस का अभाव होकर करके और जो जागृति है ये देह के मन प्रकाश, तो मन बुद्धि इंद्रियों के भीतर में जो एक प्रकार से चेतनता है जागृति है ये सत्वगुण का कार्य। प्रवृत्ति जो मन के भीतर में काम करने के लिए वृत्ति होती है उसको नाम प्रवृत्ति, और इंद्रियों के द्वारा जो कार्य आरंभ करने के लिए प्रवृत्ति होती है वो आपने इंद्रियों विषय की प्रवृत्ति, और फिर उसमें जो प्रवृत्त हो जाता है काम के मन लग जाता है तो वो क्रिया वो स्थूल प्रवृत्ति। तो मन और इंद्रिया और शरीर की जो प्रवृत्ति है काम करने के मन लगने की उतना ही रजोगुण का अंश है, और जो रजोगुण की बातें वो सब नष्ट हो जाती है। जैसे लोभ है, कर्मों के मन आसक्ति है, ये सब जो है ये सब नष्ट हो जाते हैं, ये दोषी है। चेष्टा मात्र जो है वो ज्ञानी के मन रहती है। सदिशन चेष्ट से प्रकृति ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार ज्ञानवान भी चेष्टा करता है। चेष्टा जो होती है वो पूर्णा से ही होती है। तो ज्ञानवान के हृदय के बीच के मां प्राग भोग के लिए अवश्य भावी जो प्राग भोग है उसके लिए क्रिया भी होती है, उसके लिए मन में स्पूर्णा भी होती है, स्वप्न भी उसको आता है। तो ये जो पूर्णा होनी और पूर्णा के अनुसार क्रिया होनी कुछ रूप तो राशि है किंतु ये दोषी नहीं है। इसी प्रकार से तामसी जो है तामसी पुण में क्या रहता है कि मोह मन बुद्धि और इंद्रियों का मोहित होना, या मोहित होना तो है कि आलस आना, नींद आना, अज्ञान अलग चीज है, मोह से भिन्न है। तो वो अज्ञान नहीं होता। गीता की 14वीं अध्याय में यह प्रकरण आता है तो ज्ञान और मोह उन दोनों को अलग अलग कहा, और कहीं उस मोह को निद्रा और आलस के नाम से कह दिया, वहां मोह शब्द नहीं है। जैसे निद्रा आलस प्रमाद उत्तम तत्ताम समुदारितम, निद्रा आलस और प्रमाद है, ये सो तामसी चीज है, इससे उत्पन्न हुआ जो सुख है वो तामसी सुख है। तो निद्रा और आलस जो है वो प्रार्थ के अनुसार अवश्य भावी उतना ही आता है। वो ऐसा नहीं कि रात दिन सुते रहे पड़ा रहे, नहीं, किंतु तीनों उसकी अवस्था होती है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और तीनों प्रकार की ही वृत्तियां होती है सात्विक राशि तामस, किंतु वो शुद्ध होती है, बांधने वाली नहीं होती। इसलिए ज्ञानी के द्वारा जो कर्म होती है वो कर्म कर्म ही नहीं है। इसकी परीक्षा क्या है? न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। ये प्रवृत्त होते हैं, आकर प्राप्त होते हैं, द्वेष नहीं करता कि क्यों आए, कौन द्वेष करे, उसमें कोई द्वेष करने वाला धर्मी हुआ तब तो द्वेष करे, आवे तो आओ। और जब ये चले जाते हैं तो आकांक्षा नहीं करता, इच्छा नहीं करता, इच्छा का नाम निशान मिट जाता है, किसके लिए कौन इच्छा करे। और दूसरे जो साधक हैं, उस कोटि के साधक हैं, उनमें भी इच्छा होती है, उनमें भी ये सब बातें थोड़ी थोड़ी होती है, उसका रूप थोड़ा दूसरा है। अब संसारिक जो राशि तामसी पुरुष है उनमें तो प्रत्यक्ष देखने में आता है, उनका तो बहुत डिफरेंस होता है। किंतु साधक जो आदमी है वो भी एक चाहता है कि मेरे मन के माँ, बुद्धि के माँ ये जागृति हुए, ज्ञान हुए, साधन के लिए वो चाहता है। नींद आती है तो चाहता है कि नहीं आओ तो अच्छी बात है, क्योंकि साधन के माँ विघ्न है, उसको हटाने की चेष्टा करता है, उस नींद के माँ दोष बुद्धि होती है। संसार के भोगों की तरफ कभी प्रवृत्ति हो जावे तो रोकता है, ये हमारे लिए बाधक है। कोई वक्त के मैं बीमार अवस्था है और दो दिन नींद नहीं आई तो नींद की आवश्यकता है, तो भी वो उस वक्त में नींद की इच्छा नहीं करता, नींद से द्वेष भी नहीं है और आकांक्षा भी नहीं है। जब नींद की आवश्यकता है शरीर को और नींद एक प्रकार से नहीं आती है तो मत आओ, उसके लिए परवाह नहीं करता। और जब नींद आती है तो उसके साथ में द्वेष नहीं करता, यानी दृष्टि संप्रवृत्ता नहीं, जब प्रवृत्त हो तो उसे द्वेष नहीं करे, और निवृत्त हो जाए तो आवश्यकता होने पर भी आकांक्षा नहीं करे कि नींद आवे तो ठीक है। इसी प्रकार से थी जब देह के बीच के मन प्रकाश नहीं होकर करके और गाढ़ सुषुप्ति हो जाती है तो ये नहीं कि इतनी बार गाढ़ सुषुप्ति क्यों, और समझो कि जब मन बुद्धि के मन विशेष जागृति नहीं है तो उसका इच्छा नहीं करता, और जागृति नहीं रहती है तो ये आकर प्राप्त तो यही इच्छा नहीं करता। समाधि अवस्था है, समाधि अवस्था होगी तो उसके साथ में कोई विरोध नहीं होगी, तो जब आकर प्राप्त होगी तो द्वेष नहीं है। और समाधि नहीं लगती है, ध्यान नहीं लगता है तो उसके लिए आकांक्षा नहीं करता कि मेरा ध्यान लग जाए तो ठीक है। सिद्ध जो पुरुष है, और साधक जो पुरुष है वो चाहता है कि मेरा ध्यान लग जाए तो अच्छी बात है, समाधि लग जाए तो अच्छी बात है, साधन काल के मां कोई विक्षेप नहीं हो तो अच्छी बात है, मन के मां चंचलता नहीं हो तो अच्छी बात है, आलस नहीं हो तो अच्छी बात है, ये चाहता है। और ये आगे के विघ्न प्राप्त होते हैं तो हटाना चाहता है, द्वेष करता है। किंतु जो सिद्ध महात्मा पुरुष है कोई भी वृत्ति सात्विक राशि तामसी आकर के प्राप्त हुए तो उसे द्वेष नहीं, और निवृत्त हो जाए तो उसकी आकांक्षा नहीं। यह परमात्मा की प्राप्ति के उत्तरकाल की बात बताई, उस ज्ञानी महात्मा के हृदय की बात बताई। परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष के हृदय के बीच के में कैसा भाव होता है तो बताया जाता है। जो भक्ति के द्वारा सहज मुक्ति को जो प्राप्त हो जाता है, जिसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, या अद्वैत मार्ग के द्वारा जो ब्रह्म में विलीन हो जाता है और संसार में उसका शरीर लोगों की दृष्टि में कायम है, और उस शरीर का जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण में पहली तो में गुणातीत पुरुष को लक्ष्य में रख करके उसकी बात कहता हूं। अद्वैत मार्ग के द्वारा जो उस ब्रह्म को प्राप्त हो गया है, यानी ब्रह्मवित ब्रह्मयोग होती ब्रह्मविता ब्रह्म हो जाता है, ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार साधक सो ब्रह्म ही बन गया है, और ब्रह्म बनने के बाद की जो उसकी सिद्ध अवस्था है, उस अवस्था के मां जो उसका अंतःकरण है उसकी बात कर, उसके अंतःकरण के बीच के मां संसार का अत्यंत अभाव और परमात्मा का एकदम प्रत्यक्ष भाव, परमात्मा का तो भाव और संसार का अभाव, या संसार उसको वस्त्रों के बीच के मां नहीं दिखती, सब विच्छेद हो जाता है, किंतु व्यवहार काल के मां या संसार स्वप्न दिखती है, कल्पना मात्र इसकी सत्ता है, यानी काल्पनिक सत्ता इसकी रहती है, या संसार उसके अंतःकरण के बीच में स्वप्नवत से दिखती है, एक कल्पना मात्र। जैसे किसी के नेत्रों में दोष हो जाता है तो आकाश के बीच की मां उसको त्रिवृत्त दिखते हैं, जाए से दिखते हैं, और साथ में वो अपनी आत्मा में ये समझता है कि ये आकाश में दिखते हैं और है नहीं, आकृति मात्र है इनकी किंतु वस्तु से है नहीं, दिखते हुए भी उसको अभाव के रूप में दिखता है, उसको उसका अभाव ही समझता है उसका, और आकाश के मां उसकी ये बुद्धि है कि आकाश वास्तव में है, इसलिए वह आकाश की जो सत्ता है व्यवहारिक सत्ता है, किंतु समझाने के लिए आपको बताया जाता है कि आकाश की व्यवहारिक सत्ता होते हुए व्यवहार के मां उसको सत्य समझता है, तो आकाश का तो भाव है और वहां तिलमिले को त्रिविले को इनका अभाव है, और दोनों पदार्थ उनके अनुभव में है, आकाश का अनुभव तो भाव के रूप में कि ये तो सोनाना है, और उस त्रिवरों का भाव त्रिवरों की जो प्रतीति आकृति वो अभाव के रूप, तो यहां त्रिवर स्थानी तो या संसार, और जिस मन बुद्धि से या संसार उसको कल्पित दिख रही है वो मन बुद्धि भी दिख रही है किसको, कि जैसे अंतःकरण की तीन वृत्ति है, मन बुद्धि और अहंकार, वो जो अहंकार है दूसरा अनात्म आत्म अभिमान, कर्तापने का अभिमान, देहा अभिमान, अनित पदार्थ में जनित बुद्धि रूप अविद्या, अविद्या और अविद्या के सब कार्य ये तो सब नष्ट हो जाते हैं, ये अहंकार सुनी रहता है। और जैसे उसके मन मन रहता है, जैसे उसके मन बुद्धि रहती है, इस जाति का जो अहंकार है, अंतकरण की वृत्ति रूप अहंकार, ये उसके मन रहता है। किंतु कर्ता का समझ नहीं होने के कारण से वो नाम मात्र का ही अहंकार है। बुद्धि भी तो समझो कि नाम मात्र की है, मन भी तो नाम मात्र का ही है। उसके मन से जो क्रिया बनती है वो भाई जन्म के देने वाली नहीं होती, क्योंकि आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं है। तो मन से, बुद्धि से और अहंकार से ये जो क्रिया बनती है, ये मन बुद्धि अहंकार, जैसे कोई चीज जल जाती है फिर वो काम देती है, किंतु उसमें कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। दिवलाइट है, हांडा है, और उसमें रेशम की जो जाली होती है वो जल जाती है, और जलने के बाद भी जब तक हांडे में तेल रहता है तब तक वो रोशनी देती है, और केवल उसकी आकृति मात्र है। छू करके देखो तो समझो कि वो एक प्रकार से खाक की ही आकृति है, जली हुई की आकृति है, फिर वो कोई दम नहीं है। तो इसी प्रकार से थी मन बुद्धि और ये अहंकार है, भस्म के माफक है। पूर्व के जमाने में बीज का दृष्टांत दिया जाता था कि भूमि में बीज के समान फिर वे बीज उगते तो नहीं, आकृति मात्र है उसकी, और उससे खाने से तुष्टि पुष्टि होती है, किंतु बाने से पैदा नहीं होता, धान अनाज पैदा नहीं होता। तो वो अनाज का जो बीज है, गेहूं चना जो कोई भी, उसकी एक प्रकार से आकृति मात्र है, भूनने के बाद में वो उगता नहीं, उस प्रकार की भी आकृति नहीं इसकी, उससे भी और कमजोर है। जैसे मैंने बताया डीलाइट की जाली, और वास्तव में इससे भी और कमजोर है। जैसे इन सब की भी काल्पनिक सत्ता ही है, भूमि बीजों की तो जो सत्ता है वो व्यवहारिक सत्ता है, इनकी काल्पनिक सत्ता है, बस उसे है ही नहीं, प्रतीति मात्र है। जैसे मरुभूमि में जल दिखता है और है नहीं, इसी प्रकार से आकाश में त्रिवीर दिखते हैं किंतु आकाश में त्रिवीर है नहीं, इसी प्रकार से मन बुद्धि अहंकार और शरीर इंद्रियों की आकृति दिखती है किंतु यह वस्तु से कोई चीज है नहीं। तो अंतःकरण के मन जो ये सब चीजें दिखती है, इंद्रियों के मन जो चीजें दिखती है, इंद्रियां भी द्वार है और मन बुद्धि अहंकार ये भी द्वार है, तो ये द्वार भी एक प्रकार से कल्पित ही है, इनकी भी काल्पनिक सत्ता ही है, वास्तविक कोई सत्ता नहीं है। इनमें प्रतीत होने वाले पदार्थ है और जिनमें प्रतीत हुए वे अधिकरण, ये सभी एक प्रकार से समझो कि इनकी काल्पनिक सत्ता है। अंतःकरण के मां इस सृष्टि की और खुद अंतःकरण की भी सत्ता काल्पनिक सत्ता है, कल्पना मात्र है, स्वप्न मात्र है। स्वप्न के बीच के मां जो दृश्य देखा जागने के बाद में, वो दृश्य का काल भूतकाल हो जाता है, और इसका जो काल है वो वर्तमान काल रहता है, इसलिए स्वप्न व्रत कहा जाता है, स्वप्न नहीं है। दूसरी चीज जो है परमात्मा कुसुर, सच्चिदानंद ब्रह्म कुसुर, विज्ञानानंद जो ब्रह्म है उसको जो स्वरूप है, वो के मां एकदम प्रत्यक्ष की माफिक है, यानी प्रत्यक्ष ही है। प्रत्यक्ष की माफक क्यों कहा जाता है, जैसे स्वप्न वत कहा गया इसी प्रकार से प्रत्यक्ष की माफिक। उसका जो अंतःकरण है शुद्ध आयने के समान है, और शुद्ध आयने के बीच के मां हरेक चीज का प्रतिबिंब आता है। तो यहां ब्रह्म का जो आपने स्वरूप है, असली जो ब्रह्म का जो सच्चिदानंद जो स्वरूप है, वो स्वरूप इसमें प्रतिबिंबित होता है, यानी उसका इसमें प्रतिबिंब आता है। है उसी के मारो, जैसे कोई आईने में चंद्रमा का प्रतिबिंब आता हो तो उसे को हम ये कह सकते हैं कि ये आपने चंद्रमा के सदृश है, चंद्रमा का एक प्रतिबिंब चंद्रमा के सदृश होता है, किंतु ये नहीं कह सकते इसको दिखने वाला सच्चा चंद्रमा है, वो तो बिंब के रूप में है। इसी प्रकार से असली जो ब्रह्म का स्वरूप है वो तो अपने असली स्वरूप के बीच में है, असली ब्रह्म के स्वरूप का एक अंश का उसके में वो प्रतिबिंब के रूप में आता है। समझाने के लिए हम कहते हैं, किंतु परमात्मा का कोई चेतन का कोई जड़ में प्रतिबिंब नहीं पड़ता। आंखों में अंतःकरण तो जड़ ही है ना, और परमात्मा चेतन है, किंतु वो प्रतिबिंब सा प्रतीत होता है। इसलिए ये बात कही जाती है कि जैसे स्वप्न के माफी स्वप्न वत, ऐसे यहाँ कहा जाता है कि वो प्रतिबिंब सा प्रतीत होता है। वो परमात्मा, वो जो पुरुष वाणी के द्वारा उसका वर्णन करता है, वो इस वेद और शास्त्र है। हमारे वेदों के भीतर में जो जितनी व्याख्या आती है, ऐसे महापुरुषों के वचन की वो व्याख्या है, चाहे ब्रह्मा जी का वचन हो और चाहे ऋषियों का वचन हो, और चाहे खास भगवान के वचन ही क्यों न हो, भगवान भी तो वाणी के द्वारा ये उच्चारण करके कहें कि परमात्मा सत है, चेतन है, आनंद है और सत चित से परे भी है। एक प्रकार से उसको सत असत से नहीं कहा जा सकता है, इत्यादि वाणी के द्वारा उसका लक्ष्य कराए तो वो परमात्मा सो सम है, अनंत है, व्यापक है, पूर्ण है, अपार है, शांतिमय है। इन शब्दों से उस ब्रह्म का लक्ष्य कराया जाता है, तो उसके हृदय के बीच के में वो प्रत्यक्ष के माफक है, और वाणी के द्वारा उसका वो वर्णन करता है, पुस्तकों में छपा जाता है। तो अभिप्राय है कि उसके हृदय में परमात्मा का जो भाव है वो ही समझो कि वाणी के द्वारा कहा जाता है, और वो एक प्रत्यक्ष की माफक ही है, एकदम प्रत्यक्ष की माफक ही है। इसलिए यह बात कही जाती है कि ज्ञानी महात्माओं को ब्रह्म स्व प्रत्यक्ष हो जाता है। इस प्रत्यक्ष की दो भाषा है, एक तो वो ज्ञानी महात्मा ब्रह्म ही बन गया, वो प्रत्यक्षता है, वो असली प्रत्यक्षता है, और एक उसके हृदय के भीतर में वो भगवान प्रत्यक्ष की जो प्रतीत होता है या प्रत्यक्षता है, या तो साधु के उपदेश के वास्ते है और वो उसके उपरापणीय वस्तु है, तो प्राप्त होने के योग उसको वो प्राप्त हो जाता है। प्राप्त होकर के वो पुरुष भी नहीं कह सकता, उस पुरुष का जो शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये भी नहीं कह सकते, और वो खुद भी नहीं कह सकता। खुद किससे कहेगा, वह तो वाणी नहीं है, कहना तो वाणी से बनेगा, और इस शरीर के बीच के वहां वो आ ही नहीं सकता। और यदि मान लो कल्पना कर लो आगे, तो भी वो वाणी के द्वारा उसको नहीं वर्णन कर सकता। अब दूसरी बात ये रही, भक्ति के मार्ग से गया हुआ जो पुरुष, एक तो ब्रह्म के बीच में विलीन हो गया, और एक विलीन नहीं होकर के पृथक रूप से है, तो उन दोनों के लिए यह है कि जैसे यह संसार जो है उसको कैसे प्रतीत होती है कि भगवान की लीला के रूप में प्रतीत हुए, और उसके हृदय का कैसा भाव हो जाता है, जैसे भक्तिमान पुरुषों के हृदय के भाव की बात गीता की 12वीं अध्याय के मां ये बात बतलाई गई है। तो बोलो इसमें उसमें फर्क क्या, क्यों उसमें भी समता आ जाती है ज्ञान मार्ग से गया, उसमें भी इसमें भी समता आ जाती है, तो हृदय के भीतर के बीच के मां फिर क्या फर्क रहा। ये फर्क रहा उसके हृदय के बीच के मां तो संसार का अत्यंत अभाव, अभाव सा, या यूं कहो कि स्वप्नवत या काल्पनिक सत्ता, और भगवान जो ब्रह्म जो परमात्मा सच्चिदानंद उनका एकदम प्रत्यक्ष भाव। तो यहां एक प्रकार से संसार का अभाव नहीं बतलाया जाता है। तो ये बतलाया जाता है कि उसकी अंतकरण के माया संसार लीला के रूप में रहती है, भगवान की लीला हो रही है या उसको प्रतीत होती है। इसलिए इसके बीच के मां इसका जो अंतकरण जो है, भगवान का जो अंतकरण है उस प्रकार का अंतकरण हो जाता है, जैसे भगवान को परम दयालु, परम सूर्य, परम प्रेमी कहते हैं ना, तो वो भी परम दयालु, परम प्रेमी, परम सूर्य है वो पुरुष। इसीलिए इसके मां ये बात दिखलाई कि अद्वेष्ट आश्रय भूतानां मैत्र करुण है वचे, सारे भूतों में द्वेष का अभाव और सत्र प्रेम और सब के मां मित्रता या दया सबके ऊपर। तो उसके हृदय के मां या भगवान के हृदय के मां भगवान परम दयालु, परम प्रेमी, परम सूर्य ऐसे वह पुरुष भी इस प्रकार का है, तो ये उनके हृदय के मां जो बड़े उच्च कोटि के शुद्ध भाव होते हैं, और उनके हृदय की मां इसके अपेक्षा दूसरी बात ही होती है, विलक्षण बात होती है। तो क्या होता उसके हृदय के मां, ज्ञानी के हृदय में, गुणातीत के हृदय में क्या होता है, उदासीनता होती उनके हृदय में, उदासीनता इसके मां भी होती है, किंतु वो उदासीन मेरे कहने का भी प्राय है कि संसार का अभाव होने से थी, उसमें दया है, प्रेम है, ये नहीं कह सकती। वो एकदम उनसे समझो कि संसार से, शरीर से इतना रहित है कि उपेक्षा रहती है। यहां तो है दया और प्रेम और वहां उपेक्षा है। उदासीन वदासीन गुण विचालते गुणा वर्तन ते वो तिष्ठती नियंगते। तो इस पर जोर दिया गया कि उसके शरीर के ऊपर कोई प्रकार का आघात पड़े और कोई भी प्रकार का गुणों की उस पर क्रिया का प्रभाव पड़े तो वो उदासीन क्यों रहता है, पक्षपात रहित क्यों रहता है, सदा उसकी नित्य स्थिति है समझो कि जो किसी भी घटना होती रहो वो एकदम पक्षपात से अरहित होकर के रहता है। और गुणों जो ने विचार थे गुणों के द्वारा सत्र तीनों गुणों के द्वारा चलाना नहीं होता, यानी कोई गुण का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, तो गुण अपने आप ही अपने में पड़ते हैं ऐसा समझ करके और वो सिद्ध रहता है। वो तो खुद तो ब्रह्म स्थित रहता ही है, उसका अंतःकरण भी एक अचल रहता है।